ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफल 11 वर्षों की यात्रा पर विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति और वैश्विक नेतृत्वकर्ता भारत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा और राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
11 वर्षों का परिवर्तन, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नया भारत। आज का हमारा विषय है इस चर्चा में वैश्विक नेतृत्व और स्वच्छ ऊर्जा, एक ऐसा क्षेत्र जहां भारत ने बीते एक दशक में न केवल घरेलू स्तर पर अभूतपूर्व प्रगति की है बल्कि पूरी दुनिया को दिशा देने की क्षमता भी दिखाई है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस से लेकर 2030 तक के जलवायु लक्ष्यों तक भारत अब सिर्फ एक सहभागी नहीं बल्कि एक नीति निर्धारक बन चुका है। आज की इस चर्चा में हम जानेंगे क्या रही इस बदलाव की रूपरेखा, क्या है इसकी उपलब्धियां और क्या है आगे की चुनौतियां। हमारे साथ जुड़ेंगे नीति निर्माता और वो लोग जो इस हरित क्रांति का हिस्सा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विशेष चर्चा। हमारे साथ मौजूद हैं ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन जी। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं तनेजा सर आपसे। पिछले 11 वर्षों की अगर हम बात करें तो खासतौर पर स्वच्छ ऊर्जा की नीति में भारत में क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं और ये परिवर्तन क्या बताते हैं कि भारत किस दिशा में बढ़ रहा है?
बहुत अच्छा, देखिए आपने प्रश्न किया। अगर हम पिछले 11 साल का ऊर्जा का इतिहास जो है खंगाल के देखते हैं और साथ में ये भी देखते हैं कि दुनिया उसको किस नजरिए से देख रही है, तो कुल मिलाकर के जो हमारी उपलब्धियां हैं वो इतनी जबरदस्त हैं कि भारत के अलावा पूरा विश्व जो है उसको देख रहा है। तमाम ऐसे देश हैं, खासतौर से विकासशील देश, जो काफी हद तक जो है ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत ने ये सब कैसे हासिल किया। हमारा जो क्लीन एनर्जी, जो स्वच्छ ऊर्जा है, उसके पीछे जो हमारा जो मकसद रहा है पिछले 11 साल में, मुख्यतः उसके दो बिंदु हैं। पहला ये कि हमारी निर्भरता कन्वेंशनल एनर्जी अर्थात तेल और गैस में आयात पर बहुत ज्यादा थी। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते थे कि हमारी निर्भरता आयात पर कम से कम हो, क्योंकि ऊर्जा के बिना आर्थिक विकास नहीं होता और बिना आर्थिक विकास के कुल मिलाकर के जो विकास है वो संभव नहीं हो पाता। तो एक तो ये मकसद था कि ऊर्जा का आयात है उस पर जो है निर्भरता कम हो। दूसरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य था कि कुल मिलाकर के हमने राजनीतिक आजादी जो इंडिपेंडेंस है 1947 में हासिल कर ली, लेकिन जो एनर्जी इंडिपेंडेंस है उसको हम जल्दी से जल्दी हासिल करें, क्योंकि वो उतनी ही आवश्यक है, खासतौर से अगर आप उसे ऊर्जा के दृष्टिकोण या अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़े तीन काम हमारे देश ने हुए हैं पिछले 11 साल के अंदर, पहला ये हुआ है कि जो सौर ऊर्जा, क्योंकि अगर भारत का ज्योग्राफिकल पार्किंग उठा करके देखते हैं, सौर ऊर्जा के नजरिए से भारत जो बहुत ब्लेस्ड है, हमारे पास अपार भंडार है। कुल मिलाकर आप देखिए साल में कुछ एक हफ्ता को अगर आप छोड़ दें तो हमारे ऊपर जो है वो सूर्य की बड़ी कृपा रहती है, जिसको सोलर रेडिएशन विज्ञान की भाषा में बोलते हैं। अगर आप देखें 2014 से पहले हमने उसमें कोई बहुत कम काम किया था, बल्कि उसको ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। जब 2014 के बाद हमने देखा कि सरकार ने बहुत बड़ा फोकस उसको दिया और ऐसे टारगेट रखे जिसको जो अचीव किया जा सके। अब इसी में आप देखिए कि अगर आप सौर ऊर्जा और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को देखते हैं, रिन्यूएबल में पवन ऊर्जा शामिल है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हाइड्रो पावर शामिल है, कुल मिलाकर के विश्व के सामने जो हमारी क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस होती है भारत ने एक कमिटमेंट किया। कमिटमेंट ये था कि 2030 तक, 2030 तक जो है भारत कुल मिलाकर के 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका उत्पादन करेगा। आज अगर आप डेटा को अगर आप देखते हैं तो लगभग 250 गीगावाट हमने ऑलरेडी हासिल कर लिया। मतलब हमारा जो टारगेट था वो 2030 तक 500 गीगावाट था, हम 250 तक जा चुके हैं। और मैं जब कई अधिकारियों से बात कर रहा हूं राज्यों के अंदर, जो डेटा निकल के आ रहा है वो 265 गीगावाट का है जो हम हासिल कर चुके हैं। कुल मिलाकर के 2030 से पहले ही ये जो हमारा टारगेट है ये पूरा किया जाएगा। और ऐसे भी संकेत आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को ये कहा है, वैज्ञानिकों को ये कहा है, व्यवसायियों को ये कहा है कि हो सके तो ये 2030 का जो टारगेट है इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो। इसके अंदर देखिए हमने करके दिखाया। दूसरी बात इसी के अंदर अगर आप देखते हैं तो कुल मिलाकर के जो बिजली का जो उत्पादन भारत में हो रहा है, भारत आज हम दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुके हैं जहां बिजली का निर्माण हो, लगभग जो है वो 400,000 मेगावाट के नजदीक पहुंच रहे हैं। पूरे देश के अंदर आज ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे बिजली ना पहुंच गई हो। 2014 से पहले 360 मिलियन लोगों के पास बिजली नहीं थी, आज वो बिजली उपलब्ध हो गई। तमाम जो ऑब्जर्वर हैं, खास तौर से अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के, वो इसको सोलर रिवोल्यूशन बोल रहे हैं कि भारत में सोलर रिवोल्यूशन हो रहा है। और एक बात मैं इसमें साथ में ऐड कर दूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये कि जो सोलर रिवोल्यूशन की शुरुआत सरकार ने करी एक नीति के अंतर्गत, लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं वो ये है कि आज आप पूरे देश में कहीं भी चले जाएं, चाहे वो व्यक्ति शिक्षित है या अशिक्षित है, लेकिन आज वो सौर ऊर्जा के बारे में जानता है। अपने खेत में वो चाहता है कि जो पैनल है उसका लगना चाहिए, उसके घर पे सोलर पैनल लगना चाहिए, और वो बहुत ज्यादा संपन्न नहीं है, आज वो भी ये कहता है मैं कैसे जो है सोलर पावर में इन्वेस्ट कर सकता हूं, चाहे मैं 10,000 5,000 लगा करके अपनी छत पे एक पैनल लगा सकूं। बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसी की चर्चा आज पूरे विश्व के अंदर हो रही है कि भारत ने इसको हासिल किया। और ये सारा कुछ अगर आप देखते हैं, जहां पे कुल मिलाकर के हम 3,000 मेगावाट तक नहीं थे, आज हम जहां पहुंच चुके हैं सौर ऊर्जा की दृष्टि देखें, पवन ऊर्जा की दृष्टि से देखते हैं, हाइड्रो पावर के नजरिए से देखते हैं, और साथ में जो नया रिवोल्यूशन एक और आने वाला है जो सरकार ने नीति लेके आई, वो है ऑफशोर सोलर पावर, समंदर के ऊपर जो सोलर पावर के प्लांट लगाना, उसकी नीति आ चुकी है, उसकी जो है आगे काम शुरू हो चुका है, कई राज्य सरकारें आ चुकी हैं, तमाम विदेशी निवेशक आ चुके हैं, तो वो एक दूसरी नई क्रांति है जिसकी तरफ दुनिया जो है आ देख रही है, और मुझे लगता है आने वाले समय में हम उसमें उपलब्धि हासिल करेंगे।
बिल्कुल, पिछले 11 सालों में भारत रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कैसे लीडर बनकर उभरा है, आइए सुनते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट।
पिछले दशक में भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और जलवायु कार्रवाई में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। देश ने पवन और सौर ऊर्जा में तेज वृद्धि के साथ साथ परमाणु ऊर्जा में भी अच्छा इजाफा हुआ है। भारत अब अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में 7वें स्थान पर है, जो वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में देश के बढ़ते कद को दर्शाता है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जैव ऊर्जा कार्यक्रम और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसी पहल कम कार्बन अर्थव्यवस्था की नींव रख रही है। भारत की यह स्वच्छ ऊर्जा पहल उसके वैश्विक जलवायु नेतृत्व से जुड़ी हुई है। COP26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचामृत लक्ष्य घोषित किए, जिनका उद्देश्य 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है। इसके अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहयोग को आकार देने में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिकारक बुनियादी ढांचे के गठबंधन का संस्थापक सदस्य और प्रमुख साझेदार है। ये मंच विशेष रूप से दक्षिणी देशों में स्वच्छ ऊर्जा और आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देते हैं। भारत की यह यात्रा दिखाती है कि सतत विकास केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक सच्चाई बनता जा रहा है।
तो अशोक टंडन जी को भी चर्चा में शामिल करते हैं। अशोक सर, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पीएम मोदी के एक नेतृत्व क्षमता का परिणाम नजर आता है, तो आप कैसे देखते हैं कि क्या एक वो खास शैली है प्रधानमंत्री मोदी के अंदर जिसकी वजह से इस तरह के मुश्किल लक्ष्यों को भी हासिल किया जा रहा है?
देखिए, प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य रखा है विकसित भारत का 2047 तक का, और देश बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। और जो अमृत काल है जिसमें हम अभी चल रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री ने जो देश के सामने लक्ष्य रखा है कि सेवा, सुरक्षा, गरीब कल्याण, ये 11 साल से जो लगातार इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं, तो उसके चलते भारत जो है आज दुनिया के अग्रणी देशों में आकर खड़ा हुआ है। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि दुनिया में इस समय जितने भी प्रभावशाली देश हैं उनका जो नेतृत्व है उस पंक्ति में भी आज प्रधानमंत्री खड़े हैं। आज भारत को कोई इग्नोर करके नहीं चल सकता, लेकिन कहीं भी कोई भी अगर सम्मेलन होगा उसमें आप देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री को पहली पंक्ति में खड़े हुए। तो इस दिशा में अगर हम बात शुरू से करें तो प्रधानमंत्री की एक छवि बनी थी कि वो रेस्क्यूअर इन चीफ बन गए हैं। उन्होंने पिछले 11 साल में अपने भारतीयों को ही कितने देशों से निकालकर सुरक्षित लाए, तो यूक्रेन से ही 1,000 हमारे छात्रों को निकाला गया सुरक्षित, सीरिया से निकाले गए 7,000, लीबिया से, यमन से, ऐसी कड़ी में हम देखें सूडान से, तो ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, जो भारत का कद बढ़ा है, जो हमने G20 की प्रेसिडेंसी की वो भी अद्भुत तरीके से की, उसमें अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो देश के हर प्रांत की राजधानी में G20 से संबंधित सम्मेलन हुए, और उन राज्यों में भी हुए जहां पर गैर भाजपा सरकारें भी हैं। तो पूरे देश को साथ लेकर और सारी दुनिया के नेतृत्व को यहां लाए एक झंडे के नीचे। हमने देखा कैसे दुनिया के बड़े से बड़े नेता राजघाट पर प्रधानमंत्री के साथ चल रहे हैं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने। तो ये भी एक जो अचीवमेंट थी, उसके चलते भी प्रधानमंत्री दुनिया के नेतृत्व में एक अग्रणी भूमिका में दिखाई दिए हैं। और आज G7 की समिट में प्रधानमंत्री को न्योता देना पड़ा दिया कनाडा को, बेमन से शहद दिया, और साथ में जो बयान दिया कनाडा के प्रधानमंत्री ने और भारत की जो स्थिति है, ऐसे में भारत को G7 समिट में हम ना बुलाएं ये संभव ही नहीं है। तो ये सब दर्शाता है कि भारत का जो नेतृत्व पिछले 11 साल में दुनिया में बना है, देश पहले भी तरक्की करता रहा है, लेकिन इन 11 सालों में जो देश को जहां लाकर खड़ा कर दिया प्रधानमंत्री ने, आज भारत दुनिया के अग्रणी देशों में है और दुनिया के जो बड़े नेता हैं उसकी पंक्ति में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर खड़े हैं।
भारत आज पूरे विश्व को विभिन्न मंचों पर एक साथ लाने का काम कर रहा है, चाहे वो सोलर अलायंस की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक संबोधन में इन्हीं मुद्दों पर बात की थी, आइए सुनते हैं।
आज भारत के हर कदम हर उपलब्धियों के बारे में दुनिया जानना चाहती है। हम विश्व को एक परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। जब भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी की थीम तय करता है तो कहता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। जब भारत पर्यावरण की रक्षा के लिए सोलर एनर्जी के बड़े लक्ष्य तय करता है तो कहता है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड। जब भारत वैश्विक समुदाय के स्वस्थ रहने की कामना करता है तो कहता है वन अर्थ वन हेल्थ। भारत वो देश है जिसने कोरोना के संकट में दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को उस संकट की घड़ी में दवाइयां भेजी। भारत वो देश है जिसने 100 से अधिक देशों को मुफ्त वैक्सीन भेजकर करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया।
तो नरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, पीएम मोदी के बारे में ये भी कहा जाता है कि किसी भी चीज की शुरुआत जब होती है तो इससे पीछे की काफी उनकी मेहनत होती है। सोलर की भी हम बात करें तो भारत में भले ही उनके प्रधानमंत्री के काल में तमाम परिवर्तन हो रहे हो, लेकिन इसकी शुरुआत उन्होंने गुजरात से ही अपने मुख्यमंत्री काल से ही कर दी थी। और एक तरह से हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की स्थापना देखने को मिली है, इसे आप कूटनीतिक तौर पर भारत की कितनी बड़ी जीत मानते हैं और क्या इस मोर्चे पर भारत के वैश्विक नेतृत्व का संकेत मानते हैं आप इसे?
देखिए, अगर आप गुजरात का इतिहास उठा करके देखते हैं, खासतौर से जब नरेंद्र मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री थे, गुजरात पहला राज्य था जिसने अपनी फुल फ्लेज्ड ऊर्जा नीति लेकर के आए
जी।
वो पहला राज्य था जहां पे सौर ऊर्जा का जो है भारी विकास की शुरुआत हो गई, जहां पे नहरों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाने लगे। और कन्वेंशनल एनर्जी की बात है, लेकिन गुजरात पहला राज्य था, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की स्थापना करी। गुजरात पहला राज्य था जिसने गुजरात LNG कॉर्पोरेशन की स्थापना करी। गुजरात पहला राज्य था जो कन्वेंशनल एनर्जी से लेकर के और रिन्यूएबल एनर्जी तक जो है एकदम नई तरीके की पहल लेकर के आया। गुजरात पहला राज्य था जिसने बंगाल की खाड़ी में गहरे समंदर में जाकर के और वहां पर जो है ऑक्शन के अंदर बिडिंग करी और उसको जीता और वहां पे खनन का काम शुरू करा। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं, इससे ये दिखता है ऊर्जा के मसले में कितना आगे चल के सोचते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो सोच रहे थे। आज जब मैं बड़ी बड़ी कंपनियों के यहाँ पे CEOs आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका टर्नओवर $200 बिलियन $300 बिलियन है, और वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, उनमें से एक टर्म वो यूज करते हैं प्रधानमंत्री के लिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट एनर्जी लिटरेट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं हमको लगता है जैसे हमारे इंडस्ट्री के हैं, लिंगुआ उनकी वही है, सब चीज को समझते हैं। ये सब रिफ्लेक्ट कर रहा है जिसमें आपने कहा। जब प्रधानमंत्री ने ये देखा कि ये काफी नहीं है कि सौर ऊर्जा को लेकर के भारत में एक नई नीति का निर्माण करें, एक नई सड़क का निर्माण करें, एंड देन वॉक द टॉक, उन्होंने कहा ये आवश्यक है। दुनिया के 70% देश है जहां पे सोलर रेडिएशन अर्थात सौर ऊर्जा को टैप किया जा सकता है, खासतौर से वो ग्लोबल साउथ के देश है, विकासशील देश है, उनका एक विकसित शक्ति को भी साथ में लेना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने फ्रांस को चुना। फ्रांस ग्लोबल नॉर्थ से, भारत ग्लोबल साउथ से, सेक्रेटेरिएट NCR में बनाया गया और आज पूरे विश्व के अंदर वो काम कर रहा है। जो कुल मिलाकर के जो भारत की प्रधानमंत्री की सोच है, भारत की जो सोच है, उसको पूरे ग्लोबल साउथ में खुशबू की तरह फैला रहा है। प्राइम मिनिस्टर एक चीज को समझते हैं, अगर आपको ये चाहते हैं कि भारत का पूरे विश्व के अंदर प्रतिष्ठा बढ़े, सम्मान बढ़े और भारतीयों का बढ़े, उसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले आपको अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। आज आप देखिए 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था $2 trillion से कम की थी, आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो $4.18 trillion है नॉमिनल बेसिस पे। और अगर आप उसको जो है IMF का डेटा बता रहा हूं, मेरा डेटा नहीं है, अगर आप PPP पे देखते हैं तो आज भारत 14 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, अर्थात दूसरे शब्दों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं पीपीपी के हिसाब से पर कैपिटा इनकम, जिसका वो लोग जो अर्थशास्त्र को नहीं समझते कहते हैं क्या हुआ आप 4-5 trillion dollar की अर्थव्यवस्था हो गई, पर कैपिटा आपका लो है, नहीं है, पर कैपिटा भी आज हमारा जो है लगभग $13,000 प्रति व्यक्ति है और कुछ राज्यों के अंदर जो है वो 20,000 है पीपीपी पे, क्योंकि हम एक आर्थिक महाशक्ति बने, हम टेक्नोलॉजी में महाशक्ति बन रहे हैं, हम R&D में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हम जो जियो पॉलिटिक्स में हम आगे हैं, जियो इकोनॉमिक्स में आगे हैं, हम जियो टेक में आगे हैं, हम तीनों के अंदर आज आप उस दिशा में जा रहे हैं, वो समय की बात है कि हम तीनों क्षेत्रों के अंदर सुपर पावर बनेंगे। जब आप ये सब बन जाते हैं तो आपके पास आती है एक ऐसी पावर आती है कि दुनिया उसको इग्नोर नहीं कर सकती, आप सूरज की तरह चमकते हैं। आज जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है पूरी दुनिया का, उसमें भारत सूरज की तरह चमक रहा है।
हम सौर ऊर्जा उत्पादन की बात कर रहे हैं तो भारत आज पूरे विश्व में सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक संबोधन में इस पर क्या कहा।
बीते 10 वर्षों में हमने अपनी सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को 32 times बढ़ाया है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेटिंग नेशन है। हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना बड़ी है। भारत G20 देशों में पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने वाला पहला देश है।
अशोक सर, आपसे समझना चाहेंगे कि भारत की वैश्विक छवि बदलती जा रही है और बिना भारत के दुनिया का कोई भी बड़ा सम्मेलन या कोई भी बड़ी चर्चा मुमकिन नहीं दिखाई देती है। भारत के नेतृत्व की शुरुआत आप कहां से होते हुए देखते हैं, खासतौर पर पिछले 11 साल का अगर हम जिक्र करें या प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता की बात करें, और इसका भारत के आम जनमानस खासतौर पर ग्रामीण भारत पर क्या प्रभाव आप देखते हैं पड़ता हुआ?
देखिए, कुछ समय पहले की बात है, हो सकता है 2 दशक पहले की बात हो, जब भी हम लोग विदेश में यात्रा करते थे तो हर भारतीय को एक इकोनॉमिक माइग्रेंट के तौर पर देखा जाता। भारतीयों के बारे में जो सोच थी वो बदली। कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जो भारत में IT रेवोल्यूशन हुआ उसके चलते आज हर भारतीय, चाहे वो टूरिस्ट भी क्यों ना हो या वहां का रहने वाला भारतवंशी हो, उनको सबको IT स्पेशलिस्ट के तौर से समझते हैं। तो ये जो छवि भारतीयों के बारे में बदली, और मोदी जी के आने के बाद जो भारतवंशी है, जो उनके सिर जो है वो एकदम फख्र से ऊपर हो गए हैं। उनको लगता है कि भारत की जो छवि बनी दुनिया में उसके चलते हमारी भी छवि बनी है। पहले हमको एक नीची नजर से देखा जाता था, आज भारत का जब टूरिस्ट बाहर जाता है तो मालूम पड़ता है कि ये खर्चा करेगा यहाँ। तो ये जो भारत की और भारतीयों की छवि बदली, तो उसका स्वाभाविक है कि देश में भी उसका असर दिखाई दिया। और प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से मैं देखता हूँ, जब जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो वो भारतीयों को जरूर मिलते हैं, डायस्पोरा जिसको हम कहते हैं, और डायस्पोरा में जिस तरह का रिस्पांस मिलता है उनको, हमने देखा शुरू में भी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो उनका भव्य स्वागत हुआ, उसके बाद लगातार जहां जहां वो गए लाखों की संख्या में भारतीय जो वहां पर वो उनसे मिलने आते और ये उनके साथ इंटरेक्ट भी करते, उनकी समस्याओं को भी सुलझाया जाता है। तो ये जो ग्लोबल इमेज है उसमें हमारे जो भारतीय बाहर रहते हैं, डायस्पोरा है, उनका योगदान भी है, उनकी इन्वेस्टमेंट का भी है। आज मल्टीनेशनल केवल अमेरिका में नहीं है, भारत में भी मल्टीनेशनल है और उनकी इन्वेस्टमेंट की डिमांड बाहर बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर ये जो छवि बनी है इसमें स्वाभाविक है आजादी के बाद से देश आगे बढ़ा। आज किसान भी सुखी है, हमारा मजदूर भी सुखी है, हर एक का जो जेब में जो खर्चे का पैसा बढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा कोई विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, हर क्षेत्र का विकास हो रहा है, उद्योग भी बढ़ रहे हैं, कृषि में भी उत्पादन हो रहा है। पहले सुनते थे जय जवान जय किसान, अटल जी ने उसमें जय जवान जय किसान जय विज्ञान जोड़ा और मोदी जी ने उसमें जय अनुसंधान जोड़ा, यानी R&D पर जो जोर दिया जा रहा है भारत में, जिसमें हम बहुत पिछड़े हुए थे, ये भी एक तरह से प्रधानमंत्री की देन है। तो चारों तरफ जिसको 360 degree विजन वाला एक नेतृत्व हम कह सकते हैं, उसके चलते आज भारत एक दुनिया में अपना एक अलग स्थान बना रहा है। भारत में जो विकास हो रहा है, जैसे मैंने कहा विकसित भारत, 2047 तक भारत विकासशील देश की श्रेणी से निकलकर विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा, ये सपना लेकर प्रधानमंत्री चले हैं और देश उसी तरफ बढ़ रहा है।
बिल्कुल, देश उसी तरह बढ़ रहा है। तो तनेजा सर, अमृत काल का जो एक लक्ष्य है, जो तैयारी है, उस दिशा में आप ऊर्जा के क्षेत्र में और तमाम आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां कहां पाते हैं? क्योंकि जाहिर है जब हम कोई बड़ा काम करते हैं तो उसके आसपास भले ही हमारा रास्ते पर हम अपनी रफ्तार से बढ़ रहे हो, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं होती हैं। तो अगले 10-15 साल के लिए अगर हम लक्ष्यों की चुनौती माने तो क्या होंगी वो चुनौती?
देखिए, जो हम हासिल करना चाहते हैं वो स्पष्ट है, डेस्टिनेशन स्पष्ट है, रोड मैप सरकार ने बना दिया है, माइलस्टोन्स भी काफी हद तक तय हो चुके हैं। लेकिन साथ में ये भी आवश्यक है कि ऊर्जा के नजरिए से आप देखते हैं तो मुख्यतः तीन वर्ग होते हैं, आपको पता ही है, कन्वेंशनल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और फ्यूचर एनर्जी। हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत फोकस है और हमने उसमें बहुत भारी उपलब्धि हम हासिल लगातार करते जा रहे हैं। फ्यूचर एनर्जी, उसके अंदर भी भारी काम हो रहा है, या अर्थात ऐसे रिएक्टर जहां पे कुल मिलाकर हम एक चेंबर के अंदर सूर्य का जो है वो निर्माण कर रहे हैं, जो हम फ्रांस में कर रहे हैं, पैसा हम $1 बिलियन हमने उसमें इन्वेस्ट किया। और कन्वेंशनल एनर्जी, देखिए चुनौतियां हमारे सामने सबसे बड़ी जो ये है कि किस तरीके से जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है उसको बढ़ाएं। आज भी हमारे देश के अंदर जो हम लोग शहरों में लेते हैं, जिस तरह की ऊर्जा के दृष्टिकोण से उनके पास जो सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे वो एयर कंडीशनर्स हों या बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स हों वगैरह वगैरह, वो अभी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको उपलब्ध नहीं है। ऊर्जा की जो गरीबी रेखा है उससे नीचे है, कैसे हम उनको भी उस गरीबी से निजात दिला सके, उनको ला सके। दूसरी बात, हमारे सामने एक चुनौती ये, हम ये भी चाहते हैं कि हमारे शहर जो है स्वच्छ हो जाए, हवा स्वच्छ हो जाए, नदियां सब साफ हो जाए, पर्यावरण एकदम जो है वो हो जाए, ग्रीन एनर्जी हमारे यहाँ बहुत सबसे बड़ा मंत्र है आज। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि अगर हमने 9% पे ग्रो करना है, 8% पे ग्रो करना है, अगर 10% पे करना है, तो हमको जो है कन्वेंशनल एनर्जी भी चाहिए, हमको कोयला भी और चाहिए, हमको तेल भी और गैस चाहिए, हमको गैस भी और चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि उससे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे जमीन हो, कंटेमिनेशन होता है, पोल्यूशन होता है। हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं हटा सकते। एक तरफ तो ये हमारे सामने चुनौती है कि कैसे हम बैलेंस करें कि हमारा जो विकास जीडीपी रेट है उससे भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, और साथ साथ आयात पर निर्भरता भी कम हो सके, लेकिन साथ साथ देश के अंदर गरीबी को हम पूरी तरह मिटा सकें। तो हमारे सामने चुनौती है इसको संतुलन बना करके चलना। इसलिए आने वाले 15-20 साल हमारा तेल का कंजम्पशन जो हम आयात करते हैं वो बढ़ेगा, प्राकृतिक गैस का हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, आयात भी बढ़ेगा, कोयला जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है उसमें एक सिर्फ कोयला है जो हमको 100% एनर्जी सिक्योरिटी देता है आज की तारीख में, कल क्या होगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो उसका भी हमारा खनन भी बढ़ेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा, और हो सकता है थोड़ा बहुत आयात भी बढ़े। तो कुल मिलाकर के एक तरफ जो कन्वेंशनल एनर्जी है जिससे थोड़ा प्रदूषण होता है उसकी खपत भी बढ़ेगी, और दूसरी तरफ जो रिन्यूएबल एनर्जी भी बढ़ेगी और फ्यूचर एनर्जी में हम काम करेंगे। तो ये तीनों जो एक तरीके की जो पिलर्स हैं, सरकार इन पे ध्यान दे रही है, तीनों पिलर बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें संतुलन बना के चलना जिससे कि हमारे विकास दर से समझौता ना हो, हम आजाद भी रहें, हम विकास भी करें और चाइना जैसे देश को टक्कर भी दे सके। आवश्यक हम 10% पे ग्रो करें, और 10% जीडीपी ग्रोथ के लिए हमको और तेल चाहिए होगा, हमको और गैस चाहिए होगी, हमको और कोयला चाहिए होगा, हमको और सौर ऊर्जा चाहिए होगी, हमको और पवन ऊर्जा चाहिए होगी, हमको आणविक ऊर्जा चाहिए होगी, हमको हाइड्रोजन चाहिए होगी, आप जिस ऊर्जा का भी नाम लें हमको सब चाहिए होगा। साथ साथ आने वाले 20 साल तक हमें तेल, गैस और कोयला इसका जो कंजम्पशन करना ही पड़ेगा, चाहे पसंद आए या ना आए, और दूसरी तरफ हम जो सौर ऊर्जा वगैरह जो को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है कि इसका बैलेंस केंद्रीय स्तर पे, नीति के स्तर पे, पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे, और सबसे अहम राज्यों के स्तर पे और शहरों के स्तर पे इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। केंद्र तो सोच रहा है, हम देखते हैं कई राज्य उस तेजी से नहीं चल पा रहे या कुछ शहर उस तेजी से नहीं चल पा रहे, अभी तक दिल्ली जैसा राज्य भी उतनी तेजी से नहीं चल पा रहा था। तो ये हमारे सामने चुनौतियां हैं केंद्र सरकार लिए, खासतौर से चूंकि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर है, कि जो सरकार का विजन और सपना है उसमें बैलेंस कैसे लेकर के चले, हमारे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है।
बिल्कुल। तो टनि सर, जिस हिसाब से तनेजा जी ने बताया कि एक सौर ऊर्जा या खासतौर पर ऊर्जा, ब्रॉडरली ऊर्जा के स्तर पर तमाम चुनौतियां हैं, आप किस तरह से देखते हैं वैश्विक स्तर पर, अगर हम बात करें देश में नेतृत्व के स्तर पर, कि भारत जैसे ही आगे बढ़ता है तमाम चीजों को करने के लिए अपनी क्षमता के हिसाब से, तो ग्लोबल चैलेंजेस हमारे सामने तमाम आ जाते हैं। कभी रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा होता है, कभी टैरिफ लगा दिया जाता है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही होती तो टैरिफ का असर ये होता है कि भारत के ऊपर तमाम तरह के ऐसे कर आ जाते हैं जिनकी उस वक्त कोई जरूरत नहीं होती, ना ही भारत का उसमें कोई रोल होता है। तो इस तरह से चुनौतियों से निपटने का क्या आप रास्ता देखते हैं और भारत कैसे इन चीजों से निपटे?
देखिए, भारत ने जो एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना किया और उसमें भी हमने विश्व के नेतृत्व लिया, वो था COVID-19। उस समय भारत ने अपना वैक्सीन तो विकसित किया ही, हमने 30 करोड़ COVID-19 के वैक्सीन जो हैं 100 देशों को दिए। ये जो आज हम बात कर रहे हैं भारत का नेतृत्व, भारत के प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ये ऐसे ही हमको नहीं मिल रहा है। हमने चुनौतियों का सामना करते हुए विश्व की चुनौतियों को भी अपनी चुनौती समझा और उसमें योगदान दिया। लेकिन जो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती जो हाल ही में आई थी वो थी आतंकवाद की। आतंकवाद से निपटने के लिए हम भरसक प्रयास करते थे, हमने पहले भी बालाकोट में और ये सब किया, लेकिन इस बार जिस तरह से भारत की एक अस्मिता पर चोट की गई आतंकवाद द्वारा, उसको जिस तरह से हमने निपटा और ऑपरेशन सिंदूर करके जिस तरह से विश्व को दिखा दिया कि हम सहयोग करेंगे, विश्व शांति के लिए प्रयास करते हैं, हम शिक्षा के और साइबर क्राइम सब तरफ से भी दुनिया के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर हमारे आत्मसम्मान पर चोट होगी तो हम उसका जवाब भी उसी दृढ़ता के साथ देंगे जो हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया है। और दुनिया सारी ने ये माना है कि भारत में वो क्षमता है कि वो अपनी सुरक्षा कर सकता है अपनी अखंडता की। और आज जिस तरह से हमारे भारत के संसद के प्रतिनिधि गए, उनको जिस तरह से जवाब मिला, रिस्पांस मिला, उससे दुनिया ने देखा कि सचमुच में भारत आतंकवाद का शिकार है और उसके साथ दुनिया को खड़ा होना पड़ेगा। और ये मैसेज जो गया है ये हमारे पड़ोसी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश भी है। और प्रधानमंत्री ने जो अपने एक कुशल नेतृत्व का भी प्रदर्शन किया ऑपरेशन सिंदूर कर, और सबसे बड़ी बात ये कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ, सारा विपक्ष उनके साथ खड़ा रहा, तो देश की एकजुटता जो सामने आई है ये उस कड़ी में एक और बहुत बड़ा मील का पत्थर है कि भारत विकसित भारत बन रहा है और भारत आज अग्रणी देशों में पंक्ति में खड़ा है और भारत में कुशल नेतृत्व है, सुदृढ़ नेतृत्व है, भारत का लोकतंत्र मजबूत है, भारत के चारों स्तंभ पूरी तरह से लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई कारण नहीं है कि दुनिया भारत का लोहा ना माने।
अशोक टंडन जी, आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की और ये मुद्दा खुद प्रधानमंत्री मोदी के भी दिल के बेहद करीब है, तो आइए सुनते हैं एक जनसंबोधन में उन्होंने इस बारे में अपने विचार किस तरह से व्यक्त किए।
तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है।
तो निजय सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक ऊर्जा का बड़ा क्षेत्र जो होता है वो पेट्रोल डीजल इस्तेमाल का रहता है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के तमाम चीजें की गई, फेम स्कीम 1-2 दोनों आई, लेकिन उस हिसाब से जिस हिसाब से सरकार को भी उम्मीद थी उस मोर्चे पर कामयाबी नहीं मिली है, इसकी वजह क्या मानते हैं और कैसे इनके रास्तों की दिक्कतें दूर की जाए।
देखिए, हमारी सरकार की पूरी कोशिश है, चूंकि हमारे शहरों के अंदर प्रदूषण एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो सरकार की पूरी कोशिश है कि हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है, जिसको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं, उसको लेकर के नीति लेके आई है, इंसेंटिव लेकर के आई है कि उसको तेजी से बढ़ाया जाए। लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ क्या है कि टेक्नोलॉजी की चुनौती है, वो हर देश में है कि उसमें कुछ मटेरियल ऐसे यूज होते हैं जो चंद देशों के पास उपलब्ध हैं। और आज चाइना, जिसने ये कहा जाता है कि ईवी में वहां भारी रिवॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो चाइना में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं, जो वो बिजली है, वो बिजली तो कोयले से ही आ रही है, तो वो कोल फायर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं चाइना में, तो वो पूरी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है।
पूरा
तो
फायदा उन्हें जो मिलना है पर्यावरण की सुरक्षा का, वो नहीं
मिल पा रहा है। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इसका फ्यूचर तो यही है, आने वाले समय के अंदर ईवीज ही होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। वो समय इसलिए लगेगा, एक तो बैटरी टेक्नोलॉजी को थोड़ा और आगे आने की जरूरत है, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है, और साथ साथ जो कुल मिलाकर के रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका जो हिस्सेदारी है पूरी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर, वो कम से कम 50% पहुंचने की आवश्यकता है। आज भी पूरे विश्व के अंदर जो ऊर्जा है, 79.80% जो ऊर्जा पूरे विश्व में आती है वो फॉसिल फ्यूल से आती है। फॉसिल फ्यूल का मतलब कोयला, तेल और गैस से आती है आज भी पूरे विश्व के अंदर। तो ये इसको 50% पे लाने के लिए चुनौती पूरी दुनिया के लिए। लेकिन एक बात मैं साथ साथ यहां बोल दूं कि जिस हिसाब से पूर्व मिलाकर के जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, उससे क्या हो रहा है कि एनर्जी ट्रांजिशन और कुल मिलाकर के जो रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, उसमें थोड़ा डिसरप्शन होगा, मतलब ये कुल मिलाकर के कोलेटरल डैमेज थोड़ा इसका होगा। तो आने वाले समय में चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन यह कि जब भी ये कहानी को आप देखते हैं तो भारत उन देशों के अंदर है जो उसमें लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है, और भारत जो है कुल मिलाकर के जो कह रहा है उसको कर रहा है।
तो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु नेतृत्व के क्षेत्र में भारत की यात्रा केवल तकनीकी परिवर्तन की नहीं है, बल्कि एक नई सोच और वैश्विक जिम्मेदारी की कहानी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में भारत ने यह साबित किया है कि सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। आज भारत न केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के स्वच्छ स्रोतों से पूरा करने की दिशा में अग्रसर है, बल्कि पूरी दुनिया को इस परिवर्तन का भागीदार भी बना रहा है। तो आइए हम सभी मिलकर इस हरित परिवर्तन को और आगे बढ़ाएं, स्थानीय से वैश्विक तक, नीति से व्यवहार तक। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा जी और राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन जी। आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 11 वर्षों के दौरान स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति और वैश्विक नेतृत्वकर्ता भारत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा और राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।